ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने। बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथायते नमः। जगन्नाथायते नमः। जगन्नाथायते नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद पांच अध्याय एक श्लोक नंबर दो। ना न्यूनं मुक्तसंगानां तद्रुषानां द्विजरुषभा गृहेषु अभिनिवेश आयां पुंसां भवितुम् अहर्ति। नानिनं मुक्तसंगानां तादृशानां द्विजरुषभा गृहेषु भिनिवेशो अयं पुंसां भवितुमहर्ति। नानिनं मुक्तसंगानां तादृशानां द्विजरुषभा गृहेषु भिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। नानिनं मुक्तसंगानां तादृशानां द्विजरुषभा गृहेषु भिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। शब्द अनुवाद ना नहीं नूनम निश्चय ही मुक्त संगानां विरक्त तादृशानां ऐसे द्विजरुषभा हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ विप्रवर गृहेषु गृहस्थ जीवन में अभिनिवेश अत्यधिक अनुरक्ति आयाम यह उनसाम मनुष्य का भवितुम होना अहर्ति संभव है। अनुवाद और तात्पर्य अवैचरण भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की भक्तजन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः हे विप्रवर वे संभवतः गृह कार्य में दतचित नहीं रह सकते हैं। मेरा पीछे दोहराइए, भक्तजन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः हे विप्रवर, वे संभवतः गृह कार्य में दतचित नहीं रह सकते। तात्पर्य, भक्तिरसामृत सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा की दिव्य स्थिति को तथा भगवान को जान सकता है। भगवान को जानने का एकमात्र उपाय है भक्ति। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद 14 अध्याय श्लोक नंबर 21 में इसकी पुष्टि स्वयं भगवान करते हैं। भक्त्या अहम एकया ग्राह्यम, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक नंबर 55 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति द्वारा मुझे समझा जा सकता है। अतः गृहस्थ जीवन में लिप्त होना भक्त के लिए असंभव है, क्योंकि भक्त तथा उसके साथी मुक्त होते हैं। प्रत्येक प्राणी आनंद की खोज में रहता है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी भी आनंद नहीं मिल सकता है। इसके प्राप्ति केवल भक्ति में संभव है। पारिवारिक कार्य में अनुरक्ति तथा भक्ति में कोई मेल नहीं है। अतः महाराज परीक्षित को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ कि महाराज प्रियव्रत भक्ति के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी अनुरक्त थे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं नृप कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुश्रुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतम सवधूतं परिजनसहितम कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदन सगण ललिता श्रीविशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी को कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले एक बार जय जगन्नाथ बोल के कुछ भक्त लोग नया है लेकिन बॉम्बे से आए हैं वृंदावन धाम में दर्शन करने के लिए, हमारा घर पे वो अतिथि है, इसलिए हमें जय जगन्नाथ बोल के स्वागत करते हैं। जय जगन्नाथ। और दूसरा है, आज बहुत अच्छा दिन है जो कि परम वैष्णव हिज होलीनेस गौर नारायण महाराज का व्यास पूजा ये उड़ीसा में पालन किया जा रहा है। महाराज हमेशा उड़ीसा में पालन करते हैं, अनुगुल करके है कि जगह महाराज वहाँ पे मंदिर बना रहा है, वहाँ पे उत्सव पालन किया जाता है। फिर उनका तरफ से हमारा मन में विचार आया कथा का बाद सभी के लिए एक एक स्वीट खिला रहा है। पहले भी स्वीट दे चुके हैं जगन्नाथ का प्रसाद, फिर बाद में भी स्वीट और बीच में भी स्वीट, बीच में कथा रस। तब ये जो शीर्षक चल रहा है महाराज प्रियव्रत का चरित्र, आपको जानकारी है बहुत, आप लोग वृंदावन धाम में रह के कथा तो सुनते रह रहे हैं, और बहुत भी महाराज लोग का कथा भी होता है, ध्रुव चरित, प्रहलाद चरित, परीक्षित महाराज का बारे में बहुत सारा चीज चलता है। उसी प्रकार आज का जो श्लोक है, श्लोक में एक ही शब्द का ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे, वो शब्द है मुक्त संगानाम। तब कहने का अर्थ है ये जो प्रियव्रत है ये उत्तानपाद का भाई है। उत्तानपाद का बारे में चतुर्थ स्कंद में वर्णन हो चुका है। उत्तानपाद का बारे में जब चर्चा होता है तब याद आ जाता है ध्रुव महाराज का बारे में सुनने के लिए, बाप बेटा का संपर्क रहता है ना, तब ध्रुव महाराज का बारे में सुनने के लिए तब पिताजी का नाम आ जाता है। बेटा को इसी प्रकार काम करना चाहिए जो कि पिताजी का नाम आ जाए। तो पुत्र जब ऐसा काम करता है तब पिताजी का नाम जरूर आता है। अब किसी भी शास्त्र में देखिए, और जितने भी ये भागवत में आप देखते हैं, जितना सब नाम आ रहा है वो साधारण नाम नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई साधारण बात नहीं है जो कि भागवत में आएगा। हमें हो सकता है हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन भागवत में ऐसा साधारण बात नहीं है। ये प्रियव्रत महाराज गृहस्थ जीवन बिता रहा है। किसी जगह पे कहते हैं ब्रह्मचारी बन जाओ, और किसी जगह पे गृहस्थ बनने के लिए भी उपदेश दिया जाता है, बहुत इसमें वर्णन है। तब कहते ऐसा काम करके दिखाना चाहिए जो कि पिताजी का नाम झंडा में उड़ना चाहिए, ऐसा पुत्र बनना चाहिए, ऐसा पुत्र बन के दिखाना चाहिए। इसलिए कहते हैं पुत्र कभी कुछ गलती काम करता है तब पहले किसका नाम आता है, पहले किसका नाम आता है, माता पिता का नाम आएगा। और पुत्र अच्छा काम करेगा तो माता पिता का नाम आएगा। शिष्य अच्छा काम करेगा तो किसका नाम आएगा, और शिष्य खराब काम करेगा तो। इसलिए किस प्रकार का शिष्य बनना है ये ध्यान देना है, किस प्रकार शिष्य बनना है। वृंदावन धाम रह रहे मेरा को बोलने का शक नहीं है, लेकिन हमें वृंदावन धाम का महत्व को पहले जानना है। हमें धाम में वास कर रहा है, लोग को उत्साह पूर्वक धाम आने के लिए बहुत सोचते हैं। मथुरा का बारे में कि ब्रजमंडल बारे में कोई सोचता है, ब्रजमंडल का बारे में सोचता है, आया नहीं कभी और सोचता है, वहीं पे बैठ कर सोचने मात्र से उसका जन्म जन्मांतर पाप नष्ट हो जाता है। सिर्फ सोचा है वृंदावन जाना है कि मथुरा ब्रजमंडल जाना है, ये धाम का इतने महत्व है। और हमें धाम में क्या कर रहा है, वास कर रहा है। हमें धामवासी बन चुके हैं, अपना को सोचना चाहिए धाम में रहकर करना क्या चाहिए। सिंपल है, प्रभु का नाम जपें और भगवान का बारे में सुने ज्यादा से ज्यादा। तब प्रियव्रत को नारद जी पहले समझाए, आप ब्रह्मचारी बनने के लिए, और उनने सुना भगवान का बारे में सुना, तब उनका मन में विचार आया त्याग करना चाहिए। मन में तो त्याग आया, लेकिन ब्रह्मा जी उनको जो अब उपदेश दिए थे, तो ब्रह्मा जी का बात को सुन के उन्होंने गृहस्थ जीवन बिताए। गृहस्थ जीवन बिताने का टाइम पे उनका एक पत्नी नहीं थे, कितना प्रियव्रत का दो पत्नी थी। एक ही पत्नी से लगभग 10 बच्चे हुए थे, 10 बच्चे से 3 बच्चे सन्यासी बन गए, और 7 बच्चे को सप्तद्वीप का राजा बनाए। और दूसरा जो पत्नी थी और उसका तीन पुत्र हुए, और ये तीन पुत्र मनु के पदव को प्राप्त किए, जो रविवर मनु है, तामस मनु है कहते हैं, इसी प्रकार तीन मनु का पदव को प्राप्त किए। तब यहाँ पे जो मुक्त संगानाम शब्द आता है, ये ध्यान देना चाहिए किस प्रकार संग करने से हमारा मुक्त होगा। और मुक्त संगानाम शब्द प्रियव्रत के लिए क्यों लगा गया? प्रियव्रत गृहस्थ का अंदर था, पारिवारिक जीवन बिता रहा है, लेकिन गृहस्थ का प्रति आसक्ति नहीं, विरक्त है। इसलिए कहते हैं संगानाम, मतलब मुक्त संगानाम का अर्थ होता है, इसलिए प्रभुपाद यहां पे अर्थ करते हैं विरक्त। परिवार का अंदर में रह कर कैसे विरक्त हो सकता है? एक इम्पॉसिबल होता है, लेकिन यहां पे पॉसिबल कैसा हुआ? यही है उच्च स्तर का चीज को हमको समझने के लिए। यहां पे एक एग्जांपल देते हैं, संघ का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, लेकिन पिछले कर्म पिछले स्वीकृति के अनुसार वहां पे भी संघ का काम नहीं करता है, किसी भी जगह पे संघ भी काम नहीं करता है, वो उसका जो पिछले जन्म का भक्ति है वो भक्ति आगे बढ़ा देता है उसको, क्योंकि भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान भगवद गीता में सेकंड अध्याय श्लोक नंबर 40 में बताए, नेहा विक्रम नाशोस्ती प्रत्यवाय नविद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी संग मिल जाता है, संग से कभी कभी भक्त बन जाते हैं। और मुक्त संगानाम का अर्थ में मैं आपको एक ही छोटी से ब्रीफ दे रहा हूं, सभी के सामने ये प्रकट है। जैसा विभीषण, विभीषण कौन सा राज्य में था? रावण का राज्य में। रावण का संग भी प्राप्त किया, लेकिन विभीषण का कुछ बाल बंका हुआ? विभीषण को कुछ लगा? कुछ नहीं। विभीषण का कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। और दूसरा कौन है? जो कि राम का राज्य में था, राम का संग प्राप्त किया, कौन? कैकेयी। जो भरत का मां थी वो कभी सुधरी? कभी नहीं। राम का साथ में रह के कभी नहीं सुधरे। संग की प्राप्त करने के बाद भी नहीं सुधरा। तब इधर कहने का अर्थ है, मुक्ता संगानाम का अर्थ में दूसरा अर्थ में कहते हैं, एक ही कमल का फूल कीचड़ से उगती है, कीचड़ को कभी स्पर्श नहीं करती। कीचड़ से उगते हुए फिर भी कीचड़ स्पर्श नहीं करती, फिर पानी का बीच में क्रॉस करेगा। पानी का बीच में क्रॉस कर रहा है, लेकिन फिर भी पानी स्पर्श नहीं कर रहा है। पानी को स्पर्श करते हैं? कमल का फूल पानी को स्पर्श भी नहीं करता है। कहने का अर्थ है, परिवार का अंदर में रह के फिर भी परिवार का प्रति कोई आसक्त नहीं, अनासक्त भाव में भक्ति कर रहा है। इसलिए कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, गृहे थक बने थक सदा हरे बोले डाक, सुखे दुखे भूल नाक, बदने हरि नाम करो। गृहे थाको बने थाको, किसी भी जगह पे रह के क्या करना है? प्रभु का नाम। ऐसा नहीं हमें वृंदावन जाएंगे तो प्रभु का नाम करें, बद्रीनाथ जाएंगे तो नाम करें, कि जगन्नाथपुरी जाएंगे तो नाम करेंगे, कोई तीर्थ में जाएंगे तो नाम करेंगे, ऐसा नहीं। किसी भी जगह पे रह के प्रभु का नाम करो, गृहे थाको बने थाको सदा हरि मुखे डाको, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखे दुखे भूलो ना को, सुख में हो कि दुख में हो प्रभु का नाम करो। संसार का लोक को देखा जाए, संसार का लोक जब दुख आता है तो वह मंदिर आना चालू करते हैं। संसार का लोग किसी भी व्यक्ति के पास चला जाइए, कभी भी कोई साधु मिलते हैं, पहले ये लोग साधु लोग को ऐसा समझते हैं, वो लोग सोचते हैं हमारा हाथ थोड़ा दिख लीजिएगा, बहुत दुख पड़ गया, घर पे बेटी शादी नहीं हो पा रहा है, 40 साल हो गई, ऐसा ऐसा परेशानी आ रहा है, दुकान में बिजनेस चल रहा है, मेरा पास कोई आता है हाथ दिखाने के लिए। मैं बॉम्बे अभी गया था, बॉम्बे में लोग आए, जब एक व्यक्ति ने पूछा, बोला प्रभु जी आप कभी हाथ देखते हैं क्या? मैं मतलब मैं हाथ नहीं देखता हूं, आपका सिर देखता हूं। मैं बोला हाथ तो रेखा से मैं मेरा पता नहीं चलता, मेरा सिर का रेखा से पता लगता है। मैं बोला सिर का रेखा कैसा है? उसका मुख। मैं बोला आपका मुख से मेरा पता लगता है आप भक्ति करोगे कि नहीं करोगे, आप भक्ति करोगे आपका पाप छूटेगा, और जितने पूर्व जन्म का कर्म है ये सारा छूट जाएगा। भगवान प्रमाण देते हैं भगवद गीता में, भगवान प्रमाण दिए भागवत में, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा जब भगवान का भक्ति करेंगे, और भगवान को पास जाने के लिए भक्ति ही चाहिए, ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है, और भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को पहचानने के लिए हमको भक्ति ही चाहिए। और उनको मैं बोला तुम सारा जो हस्तरेखा है ना सी सब कट जाएगा, सिर पे माला लेकर जाओ, भगवान का नाम जपो, बस सब हो जाएगा, सारा कार्य सिद्धि होगा, जितने सर्व सिद्धि होगा सिर्फ भगवान का नाम जपने मात्र से। लेकिन आपका नाम का प्रति विश्वास होना चाहिए। हमें अपना माँ का प्रति विश्वास होता है, हमें अपना पिताजी का प्रति विश्वास होता है, हम अपना देश का प्रति विश्वास होता है, हमें अपना नेता का प्रति विश्वास होता है, लेकिन भगवान का नाम का प्रति विश्वास नहीं तो क्या होगा हमारा हाल, ऐसा स्थिति है। तब जो मुक्ताना मुक्त संज्ञानाम शब्द है इसमें बहुत सारा व्याख्या होता है। परिवार का अंदर में रह के कोई आसक्त नहीं, कुछ भी आसक्त ना पुत्र का प्रति, ना पुत्री का प्रति, ना पत्नी का प्रति, ना बच्चे का प्रति, ना रिश्तेदार का प्रति, जिसका एक बार भगवान का नाम में और भगवान का प्रति और भगवान का शरण पे मन लग गया वो किसका प्रति आसक्त होगा? यहां पे यही शब्द में बताना चाहता हूं। ध्रुव महाराज राजा बनने के लिए आसक्ति था, लेकिन जब भगवान सामने में प्रकट हुए, भगवान जब प्रकट हो गए और उन्होंने संपूर्ण राजा बनने के लिए संपूर्ण भगवान को पास हाथ जोड़ दिया, बोला मेरा को राजूति करना नहीं, मेरा को राजा बनना नहीं चाहिए, मैं कांच ढूंढ रहा था कांचन मिल गया, तब मेरे को राजूति करना और राजा बनने का जरूरत नहीं, मेरा को आपका चरण का दास बनाओ, मैं आपका भक्ति करना चाहता हूँ। भगवान कहे आप पहले मांगे थे, जो चीज़ मांगे उसको आप पहले मैं दूंगा, मांगना का चीज कभी पहले पीछे हटाते नहीं प्रभु, इसलिए सोच समझ करके प्रभु से मांगना चाहिए, कभी भी हमें कुछ मांगते हैं तब भगवान से सोच समझ कर मांगना चाहिए, ध्यानपूर्वक भक्त के लिए ये सूचना है। तब दूसरा अर्थ में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, ये भावार्थ में कहते हैं भगवान को जानने के लिए एकमात्र उपाय क्या है? भक्ति। इसीलिए कहते हैं आप करोगे कृष्ण का भक्ति, कृष्ण दिलाएंगे आपका मुक्ति, आप कृष्ण का भक्ति करने मात्र से कृष्ण आपका मुक्ति दिलाएंगे। हम और कोई दूसरा का शरण में चला जाते हैं और कोई हमारा मुक्ति नहीं दे सकता है, ना हमारा देवता लोग मुक्ति दे सकते हैं, ना हमारा परिवार लोग मुक्ति दे सकते हैं, ना जो रिश्तेदार है वो मुक्ति दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता है। संसार का लोग देवता का शरण में चला जाते हैं लेकिन देवता लोग भी मुक्ति नहीं दे सकते हैं, मुक्ति देने वाले भगवान कृष्ण, इसीलिए भगवान का दूसरा नाम है मुक्ति प्रदाता, मुक्त देने वाले हैं, भगवान कृष्ण का नाम है मुक्ति प्रदाता, भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं मुक्ति दिला सकता है। इसीलिए हमें भगवान का शरण पे जाना चाहिए और भक्ति से ही जान सकते हैं। और आपका मन में प्रश्न आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है सेवा। भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। किसका सेवा? किसका सेवा? देश का सेवा, नेता का सेवा, किसका सेवा? भगवान कृष्ण का सेवा। कृष्ण का सेवा करोगे तो मुक्ति मिलेगा, इसलिए कृष्ण का सेवा करना पड़ेगा और किसी का सेवा नहीं। फिर भी मन में प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग भी मन में प्रश्न आता है, किस प्रकार हमें भगवान कृष्ण का सेवा कर सकते हैं अपना जीवन में, जन्म से लेकर लास्ट तक भगवान का सेवा करने के लिए भगवान ने ये संपूर्ण शरीर दिए है। भगवान का सेवा करने के लिए भगवान ये शरीर दिए। मनुष्य शरीर में प्रभु का भक्ति हो सकता है और किसी भी शरीर में प्रभु का भक्ति हो नहीं सकता है, इसीलिए भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दिए भक्ति करने के लिए। और ये मनुष्य शरीर में रहते हुए कोई भक्ति नहीं करता, इससे बढ़कर गधा कौन होगा। एक आर्टिकल आया अभी, कोई लोग, कोई हो सकता है वकील होगा, कोई देश का कोई नेता होगा, उन्होंने एक व्हाट्सएप में एक आर्टिकल छोड़ा जो कि गीता का ऊपर इससे बड़ा बात किया, गधा का तरफ से बात करता है। बोला ये गीता क्या है, ये गीता को कचरा में डालने का चाहिए, ये गीता क्या है, ऐसा बोलता है। तब हमारा इस्कॉन का डिवोटी उनको थ्रेटन दे रहा है, बोले जो व्यक्ति को मालूम नहीं गीता का उद्देश्य क्या है, गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है, गीता पढ़ने से क्या होता है, गीता जो कि भारत भूमि में पैदा हुई है, इसलिए कहते हैं भारत का अमृत है गीता अमृतम स्नानम, गीता जो है भारत का अमृत है, उसको मालूम नहीं है, जो मूर्ख होगा वो ऐसा बात करेगा। और एक प्रभु जी उनको बोलते हैं गधा है, जो गधा को कभी समझ में नहीं आएगा, गधा को क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। संसार में इसी प्रकार लोगों को मालूम नहीं है गीता पढ़ने से क्या होता है, गीता हमारा संस्कृति है, गीता से, गीता पढ़ के अपना जीवन को सही दिशा में चला सकते हैं, इसलिए गीता मिला है। लेकिन ऐसा कैसा बोल सकता है? कुछ गधे लोग होते हैं जो गीता के बारे में कोई ज्ञान नहीं, इसीलिए भगवान तो स्वयं बोला है, भगवान भगवत गीता में ही बोला है, न माम दुष्कृति ने मूढ़ा, मूढ़ा बोला मूर्ख, हमें इसको बोलेंगे तो मूर्खों को क्या बोला जाएगा, गधा बोला जाएगा, महामूर्ख होगा जो कि गीता को नहीं समझेगा। तो उसी प्रकार यहां पे कहने का अर्थ है भगवान को जानने के लिए भक्ति ही चाहिए, भक्ति के द्वारा ही भगवान बस होते हैं। भगवान को बांधना है, भगवान को बस करना है, भक्ति ही चाहिए और कोई उपाय नहीं। भगवान को जानने के लिए एकमात्र उपाय है भक्ति। इसीलिए भगवान भागवत में भगवान स्वयं उद्धव जी को शिक्षा देते हैं, कहते हैं भक्त्या अहम एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियसताम भक्ति ही पुनाते मुनिष्ठ सुपाकन अपि संभवात, मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझ भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वभावत अपने उन भक्त को प्रिय हूँ जो मुझे ही अपनी प्रेम भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चंडाल क्यों नहीं हो, निम्न जन्म में जन्म लिया फिर भी उसका कर्मशता से अपने को शुद्ध कर सकते हैं ओनली भक्ति का माध्यम से। फिर भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद कहते हैं 18 चैप्टर 55 नंबर श्लोक में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावानश्चास्मि ततः तत्त्व माम ततः ज्ञान्त्वा विशते तदनन्तरम्। भगवान को जानना है भक्ति का माध्यम से, लेकिन तत्त्व में जानना है, क्या तत्त्व है, क्या रहस्य है, कैसा समझोगे। इसीलिए भगवान भगवद्गीता में 4 अध्याय श्लोक नंबर 9 में फिर बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम जो व्यति ततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। भगवान को जानना है तत्त्व में, ऐसा ऊपर नीचे करके इधर उधर उल्टा सीधा करके नहीं जानना, नहीं जान सकता है, तत्व में जानना है। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, दिव्य है। ऐसा जन्म कर्म कभी किसी का भी नहीं होगा। लोग सोचते हैं बड़े बड़े कुछ ना कुछ एक्टर एक्टिंग करने के लिए आ जाते हैं टीवी का सामने, कोई कुछ एक्टिंग कर देता है, कोई मंत्र दिखा देता है और कोई मंत्र जंत्र से कुछ करा देता है, लोग सब लोग उसका चरण में गिर पड़ते हैं, ये तो भगवान बन गए, भगवान बन गए। अरे भगवान भगवान ऐसा नहीं होते हैं। टीवी का सामने आ गए तो भगवान बन गए क्या? भगवान कोई साधना करके भगवान नहीं बनते हैं। भगवान बनना, भगवान बचपन से ही भगवान भगवान ही होते हैं। भगवान इसीलिए भगवद गीता में कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, मैं जब जन्म लिया था कैसा आया था, और मेरा कर्मों को देखिए, 7 साल में 7 दिन एक ही साथ में गोवर्धन को उठाकर खड़ा हूं, एक मूड मतलब एक ही पोजीशन में, एक ही स्थान पे। अभी संसार में कोई भगवान बनना चाहता है, एक ईंट बनाकर दिखाएं, एक ईंट बनाकर दिखाएं। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। 16108 पाटरानी रखना, वो भी दिव्य स्थिति पर, ना कोई कामना है ना कोई वासना था, भगवान रंच मात्र भी भगवान का अंदर कोई वासना नहीं। संसार का जड़ जगत का लोग ऐसा समझते हैं, भगवान का लीला ऐसा किया, हम भी करना चाहते हैं। उड़ीसा में तो और आगे उड़ीसा में लोग बोलते हैं ज्यादा, मतलब अलग टाइप का बोलते हैं, क्या बोला जा सकता है, बोला हाँ कृष्ण ने ऐसा लीला किया और हम करेंगे तो क्या, कृष्ण करेगा लीला और हम करेंगे तो कीड़ा, लोग ऐसा बोलते हैं। तो वे उनको समझाने में, इसलिए तो उड़ीसा में बड़ा हानि चलता है, बहुत खतरा चलता है। इतने खतरा चलने का बाद भी लोग को नहीं समझ पा रहे, बहुत खतरा। अब भी ऐसा कुछ भूत प्रेत है कि आ गए, अभी शहर पे जितने शहर का जितने बकरी है सभी बकरी को मार दिया, ऐसा एक ही जो, और वो कौन सा जीव है मीडिया वाला भी पता नहीं लग रहा है, मीडिया वाले को पता नहीं लग रहा कौन सा मीडिया, मतलब कौन सा जीव ऐसा आ गया। अभी पता लग रहा है ऐसा है कि भूत और प्रेत है जो कि ऐसा काम कर रहा है उनको, और एक ही एरिया में, वो एक ही एरिया में ऐसा काम घटना हो रहा है, क्योंकि वो लोग जगन्नाथ का बारे में जानकारी नहीं मिलते, और जगन्नाथ का देश में रहते हुए जगन्नाथ को नहीं समझ पाते हैं, जगन्नाथ है कौन। इसलिए जगन्नाथ कुछ ना कुछ लीला का माध्यम से दिखाना चाहते हैं, कुछ कुछ करना चाहते हैं। इसलिए तो इतनी बड़े सुपर साइक्लोन हुआ था 1999 में सुपर साइक्लोन, उनको दिखाने के लिए समझाने के लिए कम से कम समझ जाए। तब महाराज प्रियव्रत गृहस्थ हुए भी पारिवारिक आसक्ति नहीं हुए, कैसा संभव है? यह है उच्च स्तर की बात जो कि भक्त के लिए वो शिक्षा है। एक जैसा आपको बताया कमल का फूल, परिवार में रहते हुए परिवार का प्रति प्रियव्रत आसक्त नहीं हुए। दूसरा, काल प्रभु जी ने जो श्लोक का ऊपर टीका कर रहे थे, तब ये श्लोक में एक ही शब्द है आत्माराम, और प्रियव्रत आत्माराम स्थिति को प्राप्त किए थे। आत्माराम स्थिति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कुछ आगे पीछे देखना नहीं होता है, और किसी का प्रति हुए वो आसक्ति नहीं होता है, आसक्ति उसका सामने आएगा नहीं, और आसक्ति एक ही चीज का प्रति होगा, कौन सा चीज? प्रभु और प्रभु का नाम, भगवान और भगवान का नाम का प्रति आसक्त होगा, और कुछ नहीं। अभी ऐसा आपको बताएंगे एक चीज जो कि नारद जी की, ये कौन सा जात की थे नारद जी की? देखा जाए तो नारद जी दासी पुत्र, नारद जी कभी गुरुकुल गए? कभी राजो सिंहासन लेकर बैठ के राजूती किया? नहीं ना। फिर नारद जी के लिए भगवान ने की परीक्षा लिया, भगवान ने परीक्षा लिया। नारद जी क्या किए थे? गृहस्थ बनने के लिए इच्छा आ गए थे, भगवान ने वहां पे परीक्षा लिया, इसीलिए नारद जी क्या बने? ब्रह्मचारी। नारद जी क्या बने? ब्रह्मचारी। जो आत्माराम होते हैं किसी के प्रति आसक्ति नहीं होते, और हमारा द्वादश महाजन जो है ये सभी एक एक ही आत्माराम, सभी एक एक ही आत्माराम। गृहस्थ में 12 महाजन का अंदर कितना गृहस्थ थे कौन बताएगा? 12 महाजन सभी को मालूम है, 12 महाजन स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्मा बलि वयासक वयम। 12 महाजन, 12 महाजन से 7 महाजन क्या थे? गृहस्थ, और 5 महाजन ब्रह्मचारी। फिर भी ध्यान पूर्वक लिख लीजिएगा, कभी किसी टाइम पे आएगा तो आप भी बता सकते हैं। कहते हैं 12 महाजन के अंदर स्वयंभू, स्वयंभू किसको कहते हैं? स्वयंभू ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी वो गृहस्थ, नारद जी ब्रह्मचारी, और शंभू, शंभू किसको कहते हैं? शिव जी। ये तो बहुत बड़ा ब्रह्मचारी होंगे, नहीं नहीं, वो गृहस्थ है लेकिन किसका प्रति आसक्त है? स्वयं अपना कपड़ा का प्रति आसक्त नहीं, इसलिए कपड़ा का भी जरूरत नहीं पड़ता है। घर का प्रति आसक्त नहीं, इसलिए जंगल में घूम रहा है, सही। कोई इतर का प्रति भी, हम लोग इतना सेंट भेंट लगाते हैं, इतर पितर लगाते हैं, वो भी इतना इतर लगाते नहीं, उनका इतर एक ही इतर है, क्या है? भस्म। वो इसका प्रति आसक्त है। हाँ, कोई गोल्ड हार इतना पहनने के लिए आसक्ति भी नहीं। शिव जी से बड़ा कोई त्यागी होगा नहीं, इतने बड़ा त्यागी है, लेकिन फिर शिव जी गृहस्थ है। पत्नी के प्रति भी आसक्त नहीं, पत्नी के प्रति कोई आसक्त नहीं, शिव जी गृहस्थ है, आत्माराम है। फिर कुमार, कुमार कौन है? 4 कुमार, सनत सनंदन सनत कुमार सनंदन, 4 कुमार है। ये 4 कुमार क्या थे? ब्रह्मचारी, पिताजी का बात को सुने नहीं। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है लेकिन पिताजी का बात नहीं सुने। अरे पिताजी का बात नहीं सुनेगा तो पाप लग जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ब्रह्मचारी बन गए, पूरा लाइफ टाइम ब्रह्मचारी, ना कपड़ा पहने ना किस पहना है, पूरा नग्न अवस्था में 5 साल के बस फुल ब्रह्मचारी। इसलिए ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, दूसरा उप कुर्बान ब्रह्मचारी। दूसरा आता है ब्रह्मचारी भी 4 प्रकार के होते हैं, गृहस्थ भी 4 प्रकार है, वानप्रस्थ भी 4 प्रकार है, सन्यासी भी 4 प्रकार की है, ये भागवत में वर्णन है। तब यहाँ पे कुमार भी क्या बने? ब्रह्मचारी। इसका बाद भगवान कपिल, कपिल क्या है? गृहस्थ है ब्रह्मचारी है? कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रह्मचारी, कुछ लोग बोल रहे हैं गृहस्थ, क्या है? कन्फ्यूज सभी लोग है। कपिल है ब्रह्मचारी, और मनु महाराज, मनु तो गृहस्थ है ऑटोमेटिक। अब प्रहलाद महाराज, हाँ सही, लेकिन बहुत बड़ा शिक्षा दिया सारा जगत को, लोग को शिक्षा दिया प्रहलाद महाराज, सभी को ब्रह्मचारी बनने के लिए, गृहस्थ बना कहे ब्रह्मचारी बनने के लिए नहीं, सभी जगत का वासी को, लोग को, भारत का लोग को नहीं, सारा विश्व का लोग को एक ही शिक्षा दिया। कुमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवत अन यह दुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि अधर्म मार तदम, शिक्षा दिया जगत का लोग को। वो भी असुर परिवार में जन्म लिया, असुर का टीचर रहा, गृहस्थ प्रहलाद महाराज का जो टीचर थे, दो टीचर का नाम क्या है? सांड और अमरक, दो टीचर है, वो भी असुर थे। वो भी असुर का परिवार में जन्म होते हुए और असुर का शिक्षा को प्राप्त, असुर का शिक्षा प्राप्त करने का बाद भी भगवान का नाम रटना छोड़े, भगवान का बारे में सारा जगत का लोगों, सारा जितने सब गुरुकुल में जितने सहपाठी थे सभी को शिक्षा देते थे, क्या करने के लिए? विष्णु का नाम लेने के लिए। विष्णु का नाम, ये जड़ जगत का शिक्षा छोड़ो, भगवान का नाम लो। हिरण्यकशिपु जब आता है तब प्रहलाद महाराज को दंड दे के बोलता है, अरे आप बोलो हिरण्यकशिपु भगवान है। प्रहलाद महाराज क्या बोलता है? विष्णु भगवान है। चलता है बाप बेटा का साथ संघर्ष, लेकिन प्रहलाद महाराज गर्भ का अंदर रह के संघ प्राप्त किया, किसका बोलिए? नारद मुनि, मुक्ता संगाना, नारद मुनि का संघ प्राप्त किया, नारद मुनि का वचन सुना, गर्भ का अंदर रह के संघ प्राप्त किया। तब प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ थे और जनक महाराज गृहस्थ है, भीष्मदेव हाँ प्योर ब्रह्मचारी, प्योर नष्टिक ब्रह्मचारी बोलते हैं, भीष्म पितामह संकल्प लिया, भीष्म प्रतिज्ञा, हमारा प्रतिज्ञा टूट जाता है लेकिन भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा टूटा नहीं, ऐसा प्रतिज्ञा लेना चाहिए। और बड़ी महाराज गृहस्थ, बड़ी महाराज यह भी गृहस्थ है। और बयासकी, बयासकी किसको कहते हैं? हाँ सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी क्या थे? ब्रह्मचारी, वो तो गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहते थे बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि निकलेंगे तो हाँ माया पकड़ लेगा, इसलिए अंदर में रह रहे थे। और जम महाराज वो कौन है? वो भी गृहस्थ है। तब सात, द्वादश महाजन में सात गृहस्थ है और पांच ब्रह्मचारी है, सभी लोग क्या थे? आत्माराम। गृहस्थ होते हुए भी कोई भी आसक्ति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, गृहस्थ बनना है ऐसा बनना है, इनका पद पर, उनका रास्ता पर, उनका दिशा पर हमको चलना चाहिए, ये शिक्षा है भागवत की। भागवत से यही शिक्षा है अपना जीवन में उतारने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। जिस प्रकार हम हाँ भगवान का नाम करते हैं मुख में रटते हैं, रटना नहीं, हृदय में इसको धारण करना है, दिल से हृदय में धारण करना है। जब हम भगवान का नाम हम रटते हैं ऐसा रटने से जैसा हमारा आँख से आंसू बहना चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय को भगवान का नाम अभी तक भी स्पर्श नहीं किया। हम बोलते हैं हमें 20 साल भक्त बन गया 20 साल हो गया, कोई बोलता है मैं 40 साल हो गया इस्कन में है, कोई बोलता है मैं 50 साल हो गया भक्त बन गया, भक्त बने भक्ति कर रहे हैं नहीं। क्रंदन अंदर से प्रकट हो जाएगा, क्रंदन भगवान का नाम करने मात्र से। तब दूसरा अर्थ में कहते हैं आत्मारामस्य मुनय निग्रंथो अपिरुक्रमे कुर्वन्ति अहितु की भक्ति मिथ्यामुत गुण हरिहि। यद्यपि आत्माराम के विभिन्न भेद विशेष रूप से वे जो आत्म साक्षात करके पथ पर स्थापित हो चुके हैं, समस्त प्रकार के भौतिक बंधन से मुक्त रहते हैं, तो भी वे भगवान की अन्य भक्ति करने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकता है। और फिर हमारा सामने जो कि शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद इसी प्रकार की साधु थे जो कि आत्माराम कहा जाएगा। क्यों? प्रभुपाद का जीवन में भी किसी का प्रति आसक्त नहीं, प्रभुपाद का जीवन में बहुत सारा दुख आया। यहाँ पे मैं एक ही श्लोक कोट कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता का। मनुष्य जीवन में जो तीन प्रकार की त्रिताप आता है, आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार की दुख आता है। श्रील प्रभुपाद का जीवन में जो आध्यात्मिक दुख है, आध्यात्मिक दुख प्रभुपाद का सामना है, नहीं आया, प्रभुपाद का सामने में वो कभी नहीं आया, इसलिए उनको कहा जाएगा आत्माराम। इसलिए कहते हैं दुखेशु अनुबित विघ्न मना सुखेशु विगत स्पृह बीतराग भय क्रोध स्थित धीये मुनि रुच्यते। आसक्ति भय और क्रोध से मुक्ति श्रील प्रभुपाद। आध्यात्मिक दुख कैसा होता है? आध्यात्मिक दुख होते हैं जो अपने शरीर तथा मन से होता है। और शरीर का दुख क्या है? जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, ये शारीरिक कष्ट है। और मानसिक कष्ट क्या है? लोभ काम क्रोध ईर्ष्या चिंता से ये कष्ट मन से उत्पन्न होता है। कृष्ण भक्त कैसा रहता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा कृष्ण पर ही आश्रित रहता है तथा जैसे परिस्थिति में कृष्ण रखे उसी में वो चिंतित नहीं होता है। विष्णु सहस्र में कहते हैं न क्रोध न च माश्चर्य न लोभ न शुभामति ही भवंती कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के पुण्यात्मा भक्तों के क्रोध ईर्ष्या लोभ तथा अशुभ विचार कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रभुपाद एक बार अपना इसी कमरा पे वृंदावन धाम में उसी कमरा में जरा शरीर वृद्ध अवस्था में और बीमार लास्ट समय में बीमार हुआ था। इसलिए प्रभुपाद लेटे हैं, 10-12 डॉक्टर आए हैं, 10 डॉक्टर आए हैं, उनका टीम आया और प्रभुपाद को देखते हुए प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद जी आप कैसे हो? प्रभुपाद जी इमीडिएटली नहीं बोलते मैं अच्छा हूं, प्रभुपाद इमीडिएटली पूछने लगे आप कैसे हो? देखिए स्थिति को, यह आत्माराम स्थिति का प्रभुपाद इमीडिएटली पूछते हैं आप कैसे हो? आप इतने दूर आने के लिए कोई कष्ट नहीं हुआ? ये आत्माराम स्थिति। और प्रभुपाद का और एक शिष्य जो कि श्रील जयानंद प्रभु, उनको कैंसर हो गया था, कैंसर होने का नाते भी भगवान का नाम और भगवान का भक्ति कभी नहीं छोड़े। तीसरा नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, वो भी आत्माराम स्थिति में 3,00,000 नाम जप करते थे। जब वृद्ध उम्र हो गया, जरा शरीर हो गया, वृद्ध हो गए, तब चैतन्य महाप्रभु आके हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कुशल मंगल है कि नहीं। चैतन्य महाप्रभु जब पूछे, हरिदास ठाकुर बताते हैं उसी टाइम पे हरिदास ठाकुर भोजन छोड़ चुके हैं लेकिन भजन नहीं छोड़े, भोजन को छोड़ चुके हैं लेकिन भजन नहीं छोड़े। चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर कहते हैं देखिए मेरा पूरा नाम नहीं हो पा रहा है, इतना मेरा कमी है, मेरा पूरा नाम नहीं हो पा रहा है, मैं जो संकल्प लिया 3,00,000 नाम करने के लिए ये मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं दुखी। ये है आत्माराम स्थिति का, ये ध्यान देना है। इसीलिए प्रिय व्रत का शिक्षा से हमको यही मिलेगा, परिवार के जीवन में रहते हुए परिवार के प्रति आसक्ति नहीं। लेकिन अभी का समय में हमको कोई परिवार के लिए बोलता है, ब्रह्मचारी को बोला जाएगा तो इमीडिएटली परिवार करने के लिए ब्रह्मचारी इमीडिएटली कोई बोले नहीं बोले वो अपना डिसाइड कर लेता है, कोई बोले नहीं बोले, ना गुरु का पास जाता है ना पिता माता का आदेश को पालन करता है। ऐसा तो प्रभुपाद का किताब पढ़कर बाई चांस आ गए भक्ति करने लगे, अच्छा संस्कार दिया जा रहा है, ब्रह्मचारी बनो। शिल प्रभुपाद का संस्था का उद्देश्य ये है, प्रभुपाद जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त ब्रह्मचारी बने, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त ब्रह्मचारी बन के हर जगह पे नारद जी जैसा प्रचार करें और हर जगह पे प्रचार करके भक्ति लाइन में जोड़ें। जो लोग गृहस्थ जीवन बिता रहा है लेकिन गृहस्थ का धर्म को पालन नहीं कर रहा है, उनको शिक्षा देने के लिए ब्रह्मचारी जाकर शिक्षा दें। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यह संस्था बनाया, ज्यादा से ज्यादा उपदेश यही है, सभी लोग का कर्तव्य है सभी लोग प्रभुपाद का संस्था में जोड़े, और सभी का कर्तव्य है प्रभुपाद का संस्था में नया नया लोग को जोड़ाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, जगद्गुरुशील प्रभुपाद की, शिष्य वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे श्याम।